प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सजीव सारथी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया और आपका स्वागत करता हूं मैं यानी आपका साथी सजीव सारथी कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में। अब तक हम इस कार्यक्रम में आपको बहुत से गीतकारों से, संगीतकारों से और गायकों से मिलवा चुके हैं। आज पहली बार ऐसा मौका लगा है कि आज हमारे मेहमान जो हैं वो एक अभिनेता हैं जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिल्म बॉलीवुड डायरी से अपना डेब्यू करने वाले अभिनेता सलीम दीवान हैं हमारे आज के मेहमान कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में। तो सलीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर।
थैंक यू सो मच संजीव जी, मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
सलीम भाई, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है इसके अंदर एक आउटसाइडर के रूप में आना और अपनी पहचान बनाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम हो सकता है। तो आपने जब ये डिसीजन लिया कि आपने एक एक्टर बनना है तो बहुत सोचा समझा हुआ डिसीजन था या एक जुनून था बचपन से कि आपने एक्टिंग ही करनी है?
संजीव जी, आपने सही कहा, मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता था और बस मैं वही कर रहा हूँ। एंड यू आर राइट कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए वो नशा, वो पागलपन, वो जुनून होना चाहिए। बिकॉज कुछ भी आउटस्टैंडिंग करने के लिए आप में अगर वो पागलपन, वो नशा, वो जुनून नहीं है तो उसको पाना बहुत मुश्किल है। और मुझे सपोर्ट मिला फैमिली का और आई एम परस्यूइंग माई ड्रीम।
तो सलीम भाई, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब कहाँ आपको बचपन में आपने कुछ फिल्में देखी जिनसे आप प्रभावित हुए या स्वाभाविक रूप से ही आपको एक्टिंग का शौक था? कैसे ये शुरू कैसे हुआ ये बताइए।
फिल्मों का प्रभाव मेरे जीवन में रहा है, मैं बचपन से फिल्में देख देख के बड़ा हुआ हूँ और यू कैन से कि आई एम हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड सिनेमा। सो फिल्में देख के मुझे लगता था कि लाइक है मैं भी ये करूँ, मैं भी ये बनूँ और लोग मुझे भी प्यार करें, लोग मुझे भी इतना सम्मान दें, लोग मुझे इतनी इज्जत दें। सो वो सब चीज़ें मुझे बहुत इम्प्रेस करती थी और उसके बाद बस यही लगता था कि मैं एक्टर ही बन सकता हूँ और कुछ नहीं बन सकता। तो वो जो बचपन का प्यार है और वो जो प्रभाव है सिनेमा का वो मुझ पर काफ़ी रहा और उसी के इन्फ्लुएंस को मैं कैरी कर रहा हूँ। आज भी सिनेमा मुझे उतना ही प्रभावित करता है, आज भी मुझे फिल्में उतनी प्रभावित करती है। सो ईमानदारी से बात बोलूँ तो सिनेमा का प्रभाव मेरे ऊपर रहा है।
जी सलीम भाई, तो आपके जो एक्टिंग करियर है उसकी शुरुआत फिर कैसे हुई? मतलब इससे पहले शायद आपने कोई रियलिटी शो भी किया था?
जी, मैं वही बताने जा रहा था आपको कि मैंने एक रियलिटी शो पार्टिसिपेट किया और मुझे अवसर मिला आईफा जाने का। आईफा दुबई में मैं गया और वहाँ पे मैं सभी एक्टर्स के साथ में रहा और मुझे लगा कि जो मैंने जो सपना देखा था वो सच हो रहा है। मैं 7 डेज आईफा में सभी इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स के साथ में रहा और आईफा में मैंने पूरा सभी इवेंट्स पार्टिसिपेट किए। तो मुझे लगा कि लाइक यू नो अब वो पॉइंट आ गया कि मैं घर वालों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात करूँ, बोल दूँ कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर पाऊँगा। एंड देन आई केम बैक हियर इन मुंबई और मैंने स्टार्ट किया और आई वॉज जस्ट लुकिंग द राइट स्क्रिप्ट जिसको मैं परफेक्टली पोर्ट्रे कर सकूँ, जिसके साथ मैं जस्टिफाई कर सकूँ। सौभाग्यशाली रहा मैं कि मुझे बॉलीवुड डायरी की स्क्रिप्ट मिली और फिर मैंने काम किया और लोगों ने मेरे काम को बहुत सराहा, बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला।
जी, बॉलीवुड डायरीज बहुत ही बढ़िया फिल्म है और वाकई एक अच्छा पोर्ट्रेयल है कि किस तरह से जो ऑल ओवर इंडिया में लोग हैं वो बॉलीवुड से प्रभावित होते हैं और फिल्मों में आते हैं और आपका जो करेक्टर था वो भी काफी हद तक आपके अपने व्यक्तित्व या आपके अपने जीवन से जुड़ा हुआ ही लगता है। तो कैसे तैयारी करी आपने इस करेक्टर के लिए?
यू आर राइट संजीव जी, मैं रिलेट कर गया इस कैरेक्टर से और मुझे लगा कि लाइक वो चीज़ मैंने महसूस की है मेरी ज़िंदगी में जिस फेज के साथ मैं गुजरा हूँ और वो मुझे करने का मौका मिला है। सो इतना परफेक्टली निकल के आया बाहर और सब ने कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सलीम कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस कैरेक्टर को। फिल्म को इंटरनेशनली काफ़ी रिकोगनाइज किया जा रहा है और लास्ट वीक ही हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि फिल्म को फोक फिल्म फेस्टिवल जो सैन फ्रांसिस्को में होने जा रहा है उसके लिए ऑफिशियली सिलेक्शन हुआ है और पूरी बॉलीवुड डायरीज टीम सिलेक्शन के लिए बधाई की पात्र है। पूरे वर्ल्ड वाइड फिल्म ट्रेवल कर रही है, फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में भेजा गया है, फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भेजा गया है। बट जैसे जैसे जहाँ जहाँ नॉमिनेशंस मिल रहे हैं हमें, उसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ।
जी बिल्कुल सही आपने कहा, काफ़ी काफ़ी अच्छे से आपने इसको निभाया है, इस किरदार को। तो जैसे कि आपने कहा कि जो जो कुछ आपने अनुभव किया वो कुछ आपको इस कैरेक्टर में भी करने को मिला, तो थोड़ा सा बताइए उस अनुभव के बारे में भी, मतलब जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था उसमें क्या क्या आपको महसूस हुआ?
मैं स्ट्रगल को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में कुछ तय कर लिया है, कुछ बनना है, और आपने अपनी मंजिल को तय कर लिया, तो फिर सामने रास्ते बसते हैं, और हर किसी के अपने अपने रास्ते हैं, वो कैसे इस मंजिल को पाता है। तो मेरी भी एक जर्नी है, सो हर किसी की जर्नी होती है, और कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है जो हम सब जानते हैं कि उस फेज के साथ गुजरना होता है, उन 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 चीज़ों को पार करके जाना होता है, तो वो मेरे साथ भी हुआ है। सो कुछ नया नहीं है, रिजेक्शन, ऑडिशन, कन्फर्मेशन बट नो सिलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार 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 होती रही और कुछ हुआ नहीं। तो वो एक एक समय आता है जब आप फील करते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, और वो समय होता है जब आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना होता है, अपने आप पे भरोसा रखना होता है, और वो भरोसे के साथ आपको आगे बढ़ना होता है। तो वो मेरी ज़िंदगी में भी हुआ। मेरा ये मानना है कि लाइफ में प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्ट्रगल बहुत है, प्रॉब्लम ये है कि आपको अपनी मंजिल को तय करना होता है। जब आपने अपनी मंजिल तय कर ली तो फिर रास्ते अपने आप बनते हैं। सो लोग इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान है कि स्ट्रगल बहुत है, परेशानी बहुत है, हर किसी के साथ है, सबके साथ है, हर किसी प्रोफेशन में। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन देने होते हैं, एक एक प्रोसीजर उसको आपको पार करना होता है। एक्टर के साथ भी ऐसा ही है कि उसको एक्टर बनना है तो उसको बहुत सारे रिजेक्शन भी देखने पड़ते हैं, सिलेक्शन भी देखने पड़ते हैं, और लास्ट मोमेंट पे जाके चीज़ें नहीं हो पाती, वर्कआउट नहीं हो पाती, वो सब चीज़ें देखनी होती है। सो प्रॉब्लम ये नहीं है लाइफ में कि आपके साथ बहुत स्ट्रगल है। मैं समझता हूँ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये तय नहीं किया लाइफ में कि उन्हें बनना क्या है। वंस यू डिसाइड योर टारगेट देन एवरीथिंग विल बी ईजी।
जी सलीम भाई, बहुत मैच्योरिटी के साथ आपने वो पूरा पीरियड हैंडल किया होगा, ऐसा मुझे यकीन है। फिर ये बताइए कि ये बॉलीवुड डायरीज जो है अल्टीमेटली आपको मिली कैसे, मतलब इसके किसी क्रू मेंबर को आप जानते थे या कैसे इस फिल्म तक आप पहुंचे?
मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया कि एक ऑडिशन चल रहा है और मिस्टर केडी सत्यम जो फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं वो खुद ऑडिशन ले रहे हैं। नॉर्मली ऑडिशन डायरेक्टर खुद नहीं आते, उनके कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, वो ऑडिशन करते हैं। बट जब सम टाइम ये होता है कि डायरेक्टर खुद ऑडिशन करता है तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। सो मैं वहाँ पर गया और मैं सत्यम जी को फर्स्ट टाइम देखा मैंने मेरी लाइफ में, और मैं उनके सामने ऑडिशन किया तो दो तीन बार रिपीटेटिव हुआ ऑडिशन हुआ। उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया मुझे, बट इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं शॉर्टलिस्टेड हूँ। फिर सेकंड टाइम इन्होंने ऑडिशन किया, उसके बाद स्क्रीन टेस्ट हुआ, और उसके बाद मुझे कॉल आया कि हम जो कैरेक्टर हम देख रहे हैं वो उसके लिए आप परफेक्ट हैं और आप वी वॉन्ट टू वर्क विद यू।
ओके, तो इस तरह से मिली आपको ये आपकी पहली फिल्म। इस फिल्म में आपके साथ काफी सीनियर आर्टिस्ट भी थे और फिल्म का क्रू भी काफी बंझा हुआ है, तो कैसा रहा आपका अनुभव इन अनुभवी लोगों के साथ काम करने का?
काफी अच्छा अनुभव रहा, सभी लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, और एक्चुअली हमारे जॉइंट सीन नहीं है बट सबकी अलग अलग कहानी है। बट मैं इनके साथ में रहा, भिलाई में शूट हुआ तो आशीष जी के पूरे शेड्यूल में मैं उनके साथ में था, राइमा का जो शेड्यूल शूट हुआ कोलकाता में मैं उनके साथ में था। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और आशीष जी ने 300 फिल्में की है, नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हैं। सो मैं लकी रहा कि इनके साथ मुझे टाइम बिताने का मौका मिला, और मैंने इनसे सीखा कि किस तरह से वो उस कैरेक्टर को जीते हैं। सो मैं लकी समझता हूँ अपने आप को कि इतने सीनियर एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हाँ, थोड़ा डर भी था कि मैं इतने सीनियर एक्टर्स के साथ में काम कर रहा हूँ तो क्या मैं उनके लेवल में परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। वो तो होता ही है, आपकी फर्स्ट फिल्म है, तो वो फियर मुझे भी था। और फिल्म देखने के बाद जब आशीष जी ने बोला कि सलीम लाइक आई डोंट हैव दैट वर्ड एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सीनियर एक्टर ने मुझे ये बात बोली है।
अच्छा सलीम भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सॉन्ग ब्रेक हम लेंगे, तो बॉलीवुड डायरी से ही कोई आपकी पसंद का कोई गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे, तो आप बताइए कौन सा गीत हम सुनवाएं और उसकी पसंद की कुछ खास वजह हो तो वही बताइए।
बॉलीवुड डायरीज के सभी गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बट मेरा फेवरेट है मन का मिर्गा ढूंढ रहा कस्तूरी कहाँ है। ऐसा गाना है, इतना रूहानी गाना है कि जो आपके दिल के अंदर की बात है वो बयां करता है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। जो बॉलीवुड डायरी का जिक्र होता है और मैं डॉक्टर सागर साहब का नाम ना लूं तो बात अधूरी रह जाएगी। सो मैं जब डॉक्टर सागर साहब से मिला तो उनके व्यक्तित्व को देख के लगता नहीं कि वो उनमें इतनी गहराई है, और जब उन्होंने गाने लिखे और जो जो कैरेक्टर के भावनाओं को बयान करने वाले गाने लिखे, सो मैं उनका फ़ैन हो गया। सो बहुत ही खूबसूरत गाने लिखे हैं डॉक्टर सागर साहब ने और बहुत खूबसूरती के साथ पिरोया है विपिन पटवा ने, जो उसके कंपोज़र हैं। सो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ कि ऐसे गाने उन्होंने बनाए और लोगों को इतने पसंद आए। तो मैं चाहता हूँ कि ये गाना आप अपने श्रोताओं को सुनाएं।
जी ज़रूर, तो लीजिए सुनिए मन का मिर्गा। ये है हमारे खास मेहमान सलीम दीवान जी की पसंद।
रेत के टुकड़े पानी से दिखते हैं, ज्ञान के धोखे मंजिल भी अपना रूप बदलती है, रसते अजब अनोखे हैं। कैसा सफर है ये कुछ न नजर आए, उलझी पहेली है ये कोई तो सुलझाए, हर सुबह की हर शाम भी सिंदूरी कहाँ है।
मन का मिर्गा
के अंदर कोई बहता है दरिया, ये निगाहें फिर भी बंजर है यहाँ।
ओ ये कैसी है लहरें
का मेरे का,
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है रेडियो प्लेबैक इंडिया पर, और इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं सलीम दीवान, जो कि एक उभरते हुए अभिनेता हैं और बॉलीवुड डायरी से अपनी अभिनय करियर की शुरुआत कर चुके हैं। तो सलीम जी, हम सवालों का सिलसिला बढ़ाते हैं। आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए कि अपनी फैमिली को कन्विंस करना आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल रहा कि आप एक एक्टर बनना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्टिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट फील्ड है। यहाँ पे हर सप्ताह आपका जो करियर है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपकी फैमिली ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया इस मामले में?
संजीव जी, आप वो सवाल पूछते हैं जिनके जवाब देने से मैं अपने आप को बचाता हूँ। एनीवे, एक्चुअली हर कोई माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा सेटल जिंदगी जिए और खुशहाल रहे और उसकी लाइफ में ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो। तो वही विचार मेरी फैमिली के भी थे कि मैं इतनी अनएक्सपेक्टेड, जहाँ पे फ्यूचर है, जहाँ पे कुछ श्योरिटी नहीं है, तो ऐसी फील्ड में जाना और वहाँ पे अपने आप को साबित करना, तो उनको थोड़ा सा उस बात के लिए वो खुश नहीं थे। बट उन्होंने जब मैंने उनको कन्विंस किया और जब मैंने उनको समझाया कि लाइक मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही करूँगा, तो वो माने। बट लास्ट मोमेंट तक वो इस बात के लिए खुश नहीं थे कि मैं एक्टर बनूँ। लेकिन जब बॉलीवुड डायरीज आई और लोगों का रिस्पांस देखा और फिल्म को अवार्ड मिला और लोगों का प्यार मिला, तो अभी सब ठीक है। लाइक अभी सब खुश हैं कि नाउ दे आर टू मच सपोर्टिव देन अर्लियर।
जी सलीम भाई, ये बहुत ही खुशी की बात है कि अब सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने कुछ एक्टिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह भी ली?
हाँ, मैंने किशोर नामित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है और मैं थिएटर से जुड़े रहा हूँ। और मिस्टर अतुल माथुर हैं जो मेरे सर रहे हैं, इनके साथ मैंने पूरा स्क्रिप्ट को डिस्कस किया। वो थिएटर गुरु हैं मेरे, उनके साथ मैं जुड़े रहता हूँ।
सलीम भाई, हमारे श्रोताओं में भी बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं और उनकी तरफ से मुझे ये अक्सर पूछा जाता है कि वो किस तरह से प्रोसीड करें। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने एक एक्टिंग स्कूल से ट्रेनिंग वगैरह भी ली, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और आपके थ्रू ये मैसेज उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो एक्टिंग स्कूल्स वगैरह होते हैं, क्या ये वाकई इफ़ेक्टिव होते हैं क्या? कि क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक्टिंग किसी को सिखाई नहीं जा सकती, तो क्योंकि आप ये कर चुके हैं, तो आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ कि हाउ गुड इट इज़ और हाउ बैड इट इज़, और क्या अगर कोई एस्पायरिंग एक्टर जो खास तौर पे मुंबई से बाहर का हो, मुंबई में आए, तो उसे किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
जैसा मैंने पहले कहा आपको कि आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन वो बहुत ज़रूरी है, और वो अगर आप में है तो आप जो बनना चाहें बन सकते हैं। और जहाँ तक बात ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की है, तो मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगा कि गुड और बैड, बट कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप समझ जाते हैं, आप इंस्टीट्यूट्स के थ्रू समझ जाते हैं, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन आप जो आप चाहें आप पा सकते हैं। सो टेक्निकल आस्पेक्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो वो सब चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट से मिलती है, और इन सबसे ऊपर है कि आपका दृढ़ निश्चय, आपका विश्वास और आपका डेडिकेशन, वो आपको वहाँ तक लेके जाता है जो आप चाहते हैं।
अच्छा सलीम भाई, बॉलीवुड डायरीज के बाद अब क्या, कौन से नए प्रोजेक्ट्स में हम आपको देख पाएंगे आने वाले समय में?
जैसा कि मैंने पहले भी बताया सभी को कि मैं स्क्रिप्ट को लेके काफ़ी चूजी हूँ। मैं वेट करूँगा राइट स्क्रिप्ट का। सो मैंने किया भी है वेट। सो अभी 2-3 स्क्रिप्ट मुझे मिली है, बट एक स्क्रिप्ट जो मुझे बहुत पसंद आई, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और प्रोडक्शन हाउस ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, तो जैसे ऑफिशियली अनाउंस करेंगे तो आप लोगों तक वो पहुँचेगा। आई एम वर्किंग ऑन दैट। आपने जो देखा अभी तक सलीम दीवान को, उससे एक स्टेप ऊपर होगा इंशाल्लाह, और आपको मज़ा आएगा।
सलीम भाई, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में से या हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में से कौन से वो एक्टर हैं जो आपके लिए प्रेरणा है और जिनको देख कर आपको लगता है कि हाँ, कुछ इस तरह का काम मुझे भी करना चाहिए?
मैं सभी अच्छे कलाकारों का फ़ैन हूँ। मैं दिलीप साहब से काफ़ी प्रभावित हूँ, और उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो भूमिकाएं निभाई है। उसके बाद मैं आमिर खान साहब, आमिर खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनके जैसा कुछ करूँ, आमिर जैसे कैरेक्टर को जीते हैं, उस जिंदगी को जी के आते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा कुछ मैं भी करूँ, ऐसा मुझे मौका मिले और मैं कर पाऊँ।
अच्छा, आजकल काफ़ी सारी फिल्मों का रीमेक बन रहा है, तो कभी आपने सोचा कि अगर किसी खास फिल्म का रीमेक बने तो आप उसमें अभिनय करना चाहेंगे, उस रोल को निभाना चाहेंगे, तो ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको आप करना चाहेंगे?
आमिर खान की लगान, पीके, दिल चाहता है, और दिलीप साहब की राम और श्याम, मुगले आजम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म। उस फिल्म को मैं आज भी देखना चाहता हूँ। उस फिल्म को मैं जब देखता हूँ मुझे लगता है लास्ट वीक रिलीज हुई है, इतना फ्रेशनेस है उसमें, इतना क्लीन फिल्म है, वाओ, इट्स अमेजिंग।
सलीम भाई, अपना कीमती समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हम अपने श्रोताओं को किसी एक खास गीत पे छोड़ के जाते हैं, तो इस बार हम वो गीत सुनाना चाहेंगे जो आपकी पसंद का हो, मतलब आपके पूरे स्ट्रगलिंग पीरियड में और आपके एक्टिंग करियर में जो भी कोई एक ऐसा खास गीत जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, कहीं ना कहीं उस गीत से आपका एक जुड़ाव है, तो वो गीत आप हमें बताइए और उस जुड़ाव की वजह भी हमें बताइए, ताकि हम वो गीत अपने श्रोताओं को सुना सकें।
ऐसे बहुत सारे गाने हैं, बिकॉज म्यूजिक में वो पावर है, म्यूजिक में वो ताकत है कि आप अपने आप से बात कर सकते हैं। तो म्यूजिक बहुत सारे गाने हैं जिसमें मुझे लगता था कि ये वो गाने मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैं वो सब सीरियस टॉक नहीं करूँगा। एक थोड़ा कॉमेडी टाइप है गाना, वो आप सुनाइए सब श्रोताओं को, आपके चाहने वालों को, सुनने वालों को। फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा गुनगुना के आपको सुनाता हूँ। टेंशन काय को लेने का, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, टेंशन काय को लेने का।
चलिए सलीम भाई, इसी गीत के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं और आपसे भी इजाजत लेते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
संजीव जी, आपका जो प्रोग्राम है एक मुलाकात जरूरी है, इसका जो नाम है वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, पता नहीं क्यों ध्यान खींच लेता है, आई डोंट नो, ऐसा लगता है कि हर किसी की कुछ ना कुछ बात है, अधूरी है, और आपने कहा कि एक मुलाकात जरूरी है, इतना कनेक्टिव है, इतना इतना टची है, वेरी वेरी गुड नेम, एंड और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया बात करके, सेलिब्रिटीज़ की, राइटर्स की, लिरिसिस्ट की, कंपोजर्स की भावनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड मैं आपके सुनने वालों को यही कहूँगा कि जितना भी जियो, खुल के जियो, जी भर के जियो, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।
मतलब जब सिल जाएगा तो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आगे छोट अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, भेजा क्यों सरकाने का, टेंशन काय को लेने का, पटेला जेब सिल जाएगा जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का,
और भेजा क्यों सरकाने का,
सही बोलता है,
टेंशन काय को लेने का,